भागवत सार के श्रृंखला में दसवें स्कंद के 53वें अध्याय पर चर्चा है। इसके दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे तो श्री भगवान उवाच तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि वेदाहं रुक्मिणा द्वेषाम् ममोद्बाहो निवारितः। श्रीभगवानुवाच तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि वेदाहं रुक्मिणा द्वेषाम् ममोद्बाहो निवारितः। श्रीभगवानुवाच तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि वेदाहं रुक्मिणा द्वेषाम् ममोद्बाहो निवारितः। श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा तथा इसी तरह से अहम मैं अपि भी तद उस पर स्थिर किए चित्त अपने मन को निद्रा नींद च साउंड थोड़ा ठीक कर तथा न लभे नहीं पाता निशि रात में वेद जानता हूँ अहम मैं रुक्मिणा रुक्मि द्वारा द्वेषात शत्रुतावश मम मेरी उद्वाह विवाह निवारितः रोका गया। अनुवाद इस प्रकार से है भगवान ने कहा जिस तरह रुक्मिणी का मन मुझ पर लगा है उसी तरह मेरा मन भी उन पर लगा है। मैं रात में सो तक नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि द्वेषवश रुक्मी ने हमारा विवाह रोक दिया है। वैसे आज हम सोच रहे थे कि इस प्रवचन को करें या ना करें क्योंकि आप सब जानते हैं परम पूज्य भक्तिचारु स्वामी महाराज इस समय हॉस्पिटल में हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम भी सोच रहे थे कि प्रवचन हो या हम लोग कीर्तन करें उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लेकिन फिर हमने सोचा कि जैसा उनकी इच्छा है। हम उनका एक अभी वीडियो देख रहे थे जो उन्होंने अमेरिका जाने से पहले शायद दिया कि उनकी इच्छा है कि प्रचार होना चाहिए और हमारा आंदोलन प्रचार का है। प्रभुपाद चाहते थे कि हम लोग, वो बता रहे थे कि प्रभुपाद चाहते थे कि हम लोग वृंदावन जाएं लेकिन वृंदावन में रहें ऐसा नहीं चाहते थे, राधा कुंड में रहें ऐसा नहीं चाहते थे, प्रचार करें। तो उनके इस आदेश को स्वीकार करते हुए फिर आज ये प्रवचन हमने सोचा कि हमें कर लेना चाहिए। साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, श्री श्री गौर नटराज दयाल निताई से, श्रील प्रभुपाद से कि वे परम पूज्य भक्तिचारु महाराज पर कृपा करें और बहुत बहुत लंबे समय तक हमें उनका संग प्रदान करें। वैसे हमने अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ सुना है कि महाराज बहुत अच्छी तरह रिकवर हो रहे हैं और आशा है कि बहुत ही जल्दी वे हॉस्पिटल से भी बाहर आ जाएंगे। तो इसीलिए हम सब प्रार्थना करके आज का ये प्रवचन, इसको कहने का और इसको सुनने का सारा लाभ महाराज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रदान करते हैं और साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि उनको जल्दी स्वस्थ करें। तो रुक्मिणी हरण की कथा हम लोग कर रहे हैं और रुक्मिणी हरण में अब तक हम लोग सुन चुके हैं कि कैसे ब्राह्मण गए भगवान के पास और फिर उन्होंने भगवान को उनका पत्र सुनाया। तो ये रुक्मिणी हरण की कथा यहाँ पर है। तो हम लोग अब तक सुन चुके, ब्राह्मण ने संदेश दे दिया और इस अध्याय में पहले 6 श्लोकों में वर्णन है कि किस तरह भगवान विदर्भ की ओर जाते हैं। द्वारिका में हैं, द्वारिका से विदर्भ, द्वारिका गुजरात में है, विदर्भ महाराष्ट्र में है। तो भगवान वहाँ पहुँचते हैं या वहाँ जाते हैं और फिर 6 श्लोक के आगे 7 श्लोक से वर्णन है 14 श्लोक तक की कैसे तैयारी होती है रुक्मिणी के विवाह की। वहाँ क्या तैयारियाँ चल रही हैं, राजा भीष्मक कैसे तैयारी कर रहे हैं इत्यादि, वो सब वहाँ पर वर्णन है। फिर 15 श्लोक से आगे 21 श्लोक तक वर्णन किया गया, अलग अलग राजा आते हैं उनका स्वागत किया जाता है। और 22 श्लोक से वर्णन है करीब 31 श्लोक तक कि रुक्मिणी बड़े चिंता में है, क्या हुआ, कृष्ण आएंगे नहीं आएंगे, ब्राह्मण वापस नहीं आए। और फिर ब्राह्मण आते हैं और 32 श्लोक से आगे करीब 40 श्लोक तक वर्णन किया गया है कि जब श्री कृष्ण आते हैं, कृष्ण और बलराम, तो उनका स्वागत किया जाता है राजा भीष्मक के द्वारा। और फिर उनको देखकर जो सारे नागरिक हैं वो क्या कहते हैं, इसका वर्णन हुआ है। और फिर अंतिम विभाग जो इसका है 40 श्लोक के आगे इस अध्याय का, उसमें कैसे भगवान रुक्मिणी का हरण करते हैं। तो ऐसे ये अध्याय बटा हुआ है। तो यहाँ हम लोग श्लोक में पढ़ रहे हैं कि जब रुक्मिणी के पत्र को भगवान ने सुना तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। तो पहले तो जब भगवान ने पत्र सुन लिया तो बड़े प्रेम से ब्राह्मण का हाथ अपने हाथ में लिया और उसको बड़े प्रेम से कहने लगे। भगवान ने कहा कि जितना मन रुक्मिणी का मुझ में लगा है उतना ही मेरी भी आतुरता है रुक्मिणी को पाने की। और जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि भगवान कहते हैं मुझे रात को नींद नहीं आती है, मतलब कितनी चिंता है। और ऐसे नहीं भगवान ने थोड़ा ब्राह्मण को प्रसन्न करने के लिए बोल दिया, ये शास्त्र की वाणी है। भगवान अपना हृदय प्रकट कर रहे हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आती है ये सोच सोच के कहीं रुक्मिणी का विवाह तो नहीं हो जाएगा किसी से, उसने इतना मेरे मुझे समर्पण किया है तो मेरा कर्तव्य है। इसलिए वो कहते मुझे भी रात को नींद नहीं आती है। और फिर इस श्लोक के आगे वाले श्लोक में भगवान महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे रुक्मिणी के क्या गुण हैं जिसके द्वारा भगवान उनका हरण करने के लिए तैयार है, उनको लेकर आने के लिए तैयार है। देखिए ये जो दो श्लोक हैं, भगवान को नींद नहीं आना, भगवान को मन समर्पित किया है, भगवान भी जैसे अभी हम लोगों ने श्लोक में पढ़ा कि जिस तरह रुक्मिणी का मन मुझ में लगा है मेरा भी मन मुझ में लगा है, और ये जो दूसरा इसके बाद का श्लोक है जहाँ भगवान योग्यता दे रहे हैं, दो योग्यताओं को देते हैं कि किस तरह रुक्मिणी को मैं लेकर आऊँगा। तो क्या दो योग्यताएँ दी उन्होंने, भगवान कहते हैं वो एकमात्र मुझे समर्पित कर चुकी है, अर्थात मेरे प्रति पूर्ण समर्पित है वो, एकमात्र मेरे प्रति। और दूसरा गुण देते हैं कि उसकी जो सुंदरता है वो त्रुटिहीन है, निष्कलंक है, और इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं उन अयोग्य राजाओं को युद्ध में हराकर रुक्मिणी को लेकर आऊंगा। तो यहां इन दो श्लोकों के अगर सार को समझने का प्रयास करें तो भगवान क्या कह रहे हैं, पहली चीज भगवान कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम्, कि जितना मन, वो कह रहे हैं कि जैसे रुक्मिणी का मन मुझ में लगा है वैसे ही मेरा भी उसमें लगा है। अर्थात पहला गुण अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमें भी यहां से आकर ये इतने सारे जो आसुरी या अयोग्य राजाओं के कारण हम लोग यहाँ रह रहे हैं, राजाओं का अर्थ है जो हम पर शासन कर रहे हैं, राजाओं का अर्थ राजनीतिक नेता से नहीं है, राजाओं का अर्थ है वो अयोग्य राजा जो हम पर अर्थात आत्मा पर शासन कर रहे हैं, उनके बीच से भगवान ले जाएं। तो कैसे ले जाएंगे ये पूरा इन दो श्लोकों में दिया है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। पहली चीज ये यथा माम प्रपद्यन्ते, अपना मन लगाना चाहिए जैसे रुक्मिणी ने लगाया, और तब भगवान कह रहे हैं क्योंकि रुक्मिणी का मन मुझ में लगा है मेरा भी मन उसमें लगा हुआ है, और कितना लगा है, रात को नींद नहीं आ रही है। अर्थात भगवान आतुरता दर्शा रहे हैं कि जितना जीव वर्णन, रुक्मिणी के लिए वर्णन नहीं है कि रुक्मिणी की रातों की नींद नहीं थी, हो गया, हो सकता है कि उनको भी ना आती हो, लेकिन वर्णन नहीं किया सुखदेव गोस्वामी ने कि रुक्मिणी को रातों को नींद नहीं आ रही थी, वो परेशान थी, इतना ठीक है उनको चिंता थी वो करना चाहती थी, लेकिन कृष्ण के लिए वर्णन किया कि उनको रात को नींद नहीं आ रही है। अर्थात जितनी आतुरता जीव को भगवान के पास जाने की होती है उससे कहीं कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा आतुरता भगवान को, जीव को अपने पास लाने के लिए होती है, और इसीलिए भगवान को नींद नहीं आ रही है। तो कोई कह सकता है अरे भगवान को क्या चिंता, भगवान तो आत्मा राम है, ऐसा कैसे हो सकता है उनको नींद नहीं आ रही है। हम लोगों को नींद आती है बात अलग है, वो तो कभी भी आ जाती है, भगवान को नींद नहीं आ रही है क्या बात है, मतलब उनको भागवतम में बिठा देना चाहिए, अगर भगवान भागवतम सुनेंगे उनको भी नींद आ जाएगी। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि भगवान को बहुत आतुरता है, भगवान का प्रेम हर जीव से उतना ही है, इतना अधिक है हर जीव से जितना जीव उन्हें प्रेम कर नहीं सकता। कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान से मेरा बहुत प्रेम है, या किसी फला फला भक्त का भगवान से बहुत प्रेम है, ये सही है, हो सकता है, जय श्री श्री गौर नटराज दयाल नेताय की जय, हो सकता है और होता भी है, लेकिन कभी हमने सोचा कि भगवान का कितना प्रेम है जीव से, ये यहां पर पता चल रहा है कि जीव उतना प्रेम कर ही नहीं सकता जितना प्रेम भगवान कर रहे हैं, जीव उतने प्रेम के विषय में सोच नहीं सकता जितना प्रेम भगवान करते हैं। हमारी क्षमता सीमित है और भगवान असीमित है, हमारा प्रेम सीमित है, भगवान का प्रेम असीमित है। तो इसीलिए पहला चीज कि हमें हमारा मन भगवान में लगाना है, और फिर भगवान कब आएंगे हमें लेने के लिए, दो चीजें भगवान ने कही, केवल मुझे ही समर्पित है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, भगवान कहते केवल मुझे समर्पित है रुक्मिणी। तो अनन्य भाव से कृष्ण के भक्त बनना, और कोई नहीं, मन में कोई विरोध नहीं, कोई और आकांक्षा नहीं, किसी और को पाने की, किसी और की पूजा करने की आकांक्षा नहीं, कृष्ण 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 और केवल कृष्ण अनन्य भाव से। तो पहला गुण रुक्मिणी का उन्होंने बताया, क्यों मैं उसे हरण करूंगा, तो क्यों हरण करेंगे भगवान, हमारा अनन्य भाव की भक्ति होनी चाहिए। और दूसरा गुण वो कहते हैं उसकी सुंदरता निष्कलंक है, त्रुटिहीन है, अर्थात अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, हमने समर्पण कर दिया या करने की प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारा भी सुंदरता त्रुटिपूर्ण नहीं होनी चाहिए, त्रुटिहीन होनी चाहिए। तो सुंदरता का अर्थ क्या है? सुंदरता उसे कहते हैं सच्ची सुंदरता जो कृष्ण को आकर्षित करे। तो यहां जो कृष्ण, यहां जो सुंदरता की बात रुक्मिणी की कर रहे हैं, वो उस सुंदरता की नहीं जिसे अन्य राजा देख रहे हैं, भगवान उस सुंदरता की बात कर रहे हैं जिससे वो आकृष्ट हो रहे हैं। सच्ची सुंदरता तो जीव की वो है कि वो कृष्ण को आकृष्ट करे। कोई कह सकता है ऐसे क्यों, इस जगत के लोग क्यों नहीं आकृष्ट हों? तो पूछना चाहिए कि कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, और वो सर्व आकर्षक व्यक्ति अगर किसी के प्रति आकृष्ट हो रहा है वो सच्ची सुंदरता है। इस जगत के लोग तो हर चीज के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, हमें तो कुछ दिखाई दे जाए हम आकृष्ट हो जाते हैं, और हमारा तो आकर्षण चेंज होता रहता है, लेकिन भगवान आकृष्ट हो इसका अर्थ क्या है? हमें त्रुटिहीन होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए। किन चीजों में? सबसे पहली चीज, जीव को त्रुटिहीन होना चाहिए तपस्या में, उसकी तपस्या त्रुटिहीन हो, ये सुंदर बनाती है उसे। शरीर सुंदर नहीं बनाता, सुंदरता किससे आती है? पहली चीज हमारी तपस्या त्रुटिहीन हो। त्रुटिहीन मतलब निष्कलंक, उसमें कोई कमी ना छोड़े हम। तपस्या की पूर्णता प्राप्त हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन हमारे प्रयास में 100% होना चाहिए, उसमें कोई कमी ना हो, उसे कहते हैं त्रुटिहीन होना। तो तपस्या कब त्रुटिहीन होती है? जब आचार्यों के आदेश पर अपना 100% देते हुए कृष्ण की प्राप्ति के लिए की गई तपस्या त्रुटिहीन कहलाती है। अन्य सारी तपस्याएं, फिर वो हिरण्यकश्यपु की तपस्या हो, रावण की तपस्या हो, किसी इस जगत के व्यक्ति की तपस्या हो, कोई राजनीतिज्ञ की तपस्या हो, वो सब व्यर्थ है। श्रम एव हि केवलम। तो तपस्या का अर्थ क्या है? पहली चीज, तीन चीजें तपस्या में बड़ी आवश्यक हैं, आचार्यों का निर्देश होना चाहिए, हमारा 100% होना चाहिए, और कृष्ण की प्रसन्नता उद्देश्य होना चाहिए, ये तपस्या है। तो त्रुटिहीन तपस्या हो हमारी जिससे हम पशु जीवन से मनुष्य बन सकें। प्रभुपाद समझाते हैं कि पशु और मनुष्य में तपस्या अंतर है, धर्म का अर्थ है तपस्या का पालन करना। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर तपस्या नहीं कर सकते तो पशु हैं, और हम लोग देखते हैं पशु कोई तपस्या नहीं कर सकते, उनको जबरदस्ती कभी कभी कराई जाती है, लेकिन स्वेच्छा से नहीं करते, लेकिन मनुष्य जीवन में किया जा सकता है। तो इसीलिए मनुष्य बनने के लिए हमें तपस्या को करना है। तो त्रुटिहीन तपस्या कीजिए जिससे पशु जीवन से हम मनुष्य जीवन की ओर आ सकें, और मनुष्य जीवन में आकर दूसरा क्या होना चाहिए हमारा? त्रुटिहीन चीज जो हमें कृष्ण के प्रति, कृष्ण जिससे आकृष्ट हो, चरित्र। तो एक तपस्या करें जिससे मनुष्य जीवन से हम पशु जीवन से हम मनुष्य जीवन में आ सकें, और मनुष्य जीवन में आकर त्रुटिहीन चरित्र हो। तपस्या त्रुटिहीन हो और हमारा चरित्र निष्कलंक हो, तो चरित्र जब निष्कलंक होगा, त्रुटिहीन होगा, तो वो हमें तैयार करेगा साधना भक्ति के लिए। क्योंकि चरित्र क्या कहा जाता है, किसे त्रुटिहीन चरित्र कहा गया है? ऐसे तो बहुत लोग हैं जो भक्त नहीं है लेकिन उनके चरित्र बहुत अच्छे हैं। लेकिन त्रुटिहीन चरित्र क्या है? इसमें कोई त्रुटि ना हो। अगर कोई बहुत अच्छा आचरण करता है, बहुत अच्छे से रहता है, कोई नियम नहीं तोड़ता है, फिर भी उसमें त्रुटि है अगर वो कृष्ण की भक्ति की ओर नहीं जा रहा, तो त्रुटिहीन चरित्र वो है, ऐसा चरित्र जो कृष्ण भक्ति में सहायता करे, ऐसे चरित्र जो कृष्ण और कृष्ण के भक्तों को आकृष्ट करे, ऐसा चरित्र जो अन्यों को कृष्ण की ओर आकृष्ट करे, वो त्रुटिहीन चरित्र है। तो हमारे त्रुटिहीन तपस्या हो, जैसे भगवान यहां सुंदरता की बात कर रहे हैं रुक्मिणी की, तो निष्कलंक त्रुटिहीन तपस्या, निष्कलंक चरित्र, और फिर त्रुटिहीन क्या नहीं, तीसरी चीज विश्वास। हमारे विश्वास में जरा भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज विश्वास हमारा त्रुटिहीन हो, वो हमें साधक के स्तर पर ऊपर उठाता है। तपस्या हमें मनुष्य बनाती है, चरित्र तैयार करता है, और विश्वास साधक बनाता है। क्या विश्वास होना चाहिए एक साधक को? मैं जिस पथ पर चल रहा हूं वो पथ सही है, मैं जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधना कर रहा हूं वो उद्देश्य सही है। ये दो विश्वास एक साधक को होने चाहिए। जैसे हम सबको है कि हम सब जिनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग में कोई त्रुटि नहीं है, हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चल रहे हैं उस उद्देश्य में कोई त्रुटि नहीं है, तो ये साधक है। तो हमारा तपस्या त्रुटिहीन हो, हमारा चरित्र त्रुटिहीन हो, हमारा विश्वास त्रुटिहीन हो, और अंततः हमारा प्रेम या हमारी भक्ति त्रुटिहीन हो, तब हम तैयार हैं कृष्ण के द्वारा हरण करने के लिए। तो जैसे श्री कृष्ण ने यहां कहा कि रुक्मी ने द्वेषवश मेरे विवाह को रोक दिया है, मैं तैयार हूं रुक्मिणी से विवाह करने, लेकिन रुक्मी ने रोक दिया है द्वेषवश, फिर भी मैं जाकर लेकर आऊंगा। तो हम सबकी प्रार्थना यही होनी चाहिए भगवान कृष्ण से। यहां रुक्मिणी देवी जीव का प्रतिनिधित्व कर रही है, रुक्मी इस जगत के अनर्थों का, पापों का, हमारे हृदय में जो बसे हुए काम वासना इत्यादि, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए भगवान ने कहा द्वेषवश, विशेष करके द्वेष कृष्ण से दूर रखने का एक महत्वपूर्ण कारण है हमारा कृष्ण से द्वेष करना। और कैसे हम कृष्ण से द्वेष करते हैं? कृष्ण से द्वेष करने का पहला लक्षण है, अगर हम अपनी मान प्रतिष्ठा चाहते हैं हम कृष्ण के द्वेषी हैं। पौंडरक चाहता था, शिशुपाल चाहता था, तो अगर हमारा द्वेष कृष्ण के प्रति कैसे प्रकट होता है? सबसे पहला, अगर हम बहुत मान सम्मान की कामना कर रहे हैं हम द्वेषी हैं कृष्ण के। अगर हम भोग करने की कामना कर रहे हैं हम द्वेषी हैं कृष्ण के। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण को भोग करते देख नहीं सकते, इसीलिए हम आ जाते हैं असुर बनकर। कौन सा असुर आया था? भगवान जब रासलीला कर रहे थे, स्त्रियों को उठाकर ले गया था, कृष्ण लीला सुन चुके हैं हम लोग, हाँ, द्विविध आया था, तो उठाकर ले गया था ना, फिर मारा, बलराम जी भागे, बलराम जी को कहा रुको तुम इनको संभालो, मैं भाग मार के आता हूं, इन स्त्रियों के साथ तुम रहो। तो अगर हमारे अंदर भोग करने की कामना है हम कृष्ण के द्वेषी हैं, मान सम्मान की बड़ी कामना है हम कृष्ण के द्वेषी हैं, तो कोई जगत में कह नहीं सकता कि मैं कृष्ण का द्वेषी नहीं हूं, भगवान के शुद्ध भक्तों को छोड़कर। और हम सब भी द्वेषी हैं, केवल आचार्य गण, भगवान के शुद्ध भक्त, हमारे वर्तमान आचार्य, इनके अंदर अथाह प्रेम है कृष्ण के लिए, लेकिन हम सब द्वेषी हैं। मान सम्मान की कामना द्वेषी, भोग की कामना द्वेषी है, तो इसीलिए रुक्मी ऐसे द्वेष का सूचक है, रुक्मिणी जीव का सूचक है। और कहाँ फंसी हुई हैं, वो जो राजा भीष्म का राज्य है उसमें वो फंसी हुई हैं, क्योंकि बहुत से राजा जरासंध शिशुपाल अब सब वहाँ पर इंतज़ार करेंगे, जाने नहीं दें, तो हम लोग इस भौतिक जगत में फंसे हैं। और हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि जैसे आपके हृदय में इतनी तीव्र इच्छा हुई रुक्मिणी के हरण करने की, हमें भी हरण कर लीजिए। तो भगवान आकर हरण करेंगे अगर हमारा समर्पण केवल कृष्ण को है, अनन्य भक्ति है, और त्रुटिहीन हमारी तपस्या, त्रुटिहीन हमारा चरित्र, त्रुटिहीन हमारा विश्वास और त्रुटिहीन हमारा प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है। तो ऐसे भगवान ने वर्णन किया। और फिर ये जान करके अब बहुत जल्दी ही रुक्मिणी के विवाह का समय आने वाला है, लग्न का समय, तुरंत दारुक से कहा रथ लेकर आओ। रथ आ गया, ब्राह्मण को बिठाया और चल दिए अकेले, कोई सेना नहीं ली, बलराम जी को नहीं बताया। साधारणतः ऐसा होता नहीं था, जहाँ भी जाना है, अभी जैसे हमने पहले देखा कालयवन आए, जरासंध आए, तो भगवान ने बातचीत की क्या करना है, लेकिन अब कोई बातचीत नहीं, चल दिए। क्यों? बड़े आतुर हैं, बचाना है मुझे रुक्मिणी को। देखिए कभी कभी आतुरता में भगवान भूल जाते हैं कि उनके लिए क्या असंभव है। चाहते तो वहीं से बैठे बैठे रुक्मिणी को बचा सकते थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं था, लेकिन भगवान आतुरता में ऐसी चीजें भूल जाते हैं। जैसे जब परीक्षित महाराज को बचाना था तो भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया। अब गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं तो ये तो स्वाभाविक है, वो केवल भगवान कर सकते हैं, लेकिन उस समय भी आतुरता इतनी, अपना गदा लेकर गए और चक्र लेकर गए कि कहीं युद्ध करना पड़ा तो करेंगे अंदर। आतुरता, भगवान को कौन सा अंदर युद्ध करना पड़ता गर्भ में, वहां गदा ले जाने की क्या जरूरत थी। ये आतुरता उनकी, कहीं से भी मुझे बचाना, तो भक्त को बचाने की आतुरता। इसलिए भगवान अकेले चल दिए, सोचा नहीं कि सेना को ले लूं, वहां युद्ध होगा, बलराम जी को बता दूं। बलराम जी दरअसल आए और उनको पता चला कि क्या हुआ, कहां गया कृष्ण। उन्होंने कहा वो तो चले गए, कहां गए, शादी करने। अरे बलराम जी ने कहा अकेले, ले हाँ। तो बलराम जी को फिर पता चला कि वहां बैंड बाजा बजाने की जरूरत होगी, मतलब लोगों का बैंड बजाने की जरूरत होगी, शादी में बैंड बाजा बजता है। तो बलराम जी ने कहा ठीक है, बैंड बाजा बारात लेकर वो चले। कृष्ण अकेले गए, बारात बलराम जी लेकर आए, मतलब सेना बलराम जी लेकर चले। तो अब कृष्ण ऐसे वहां से चल दिए। अब ये यहां पर सब हो रहा है, लेकिन रुक्मिणी को कोई संदेश नहीं। रुक्मिणी तो इंतजार कर रही हैं, उनको कोई संदेश ही नहीं है। उस समय मोबाइल नहीं था, फेसबुक पर अपलोड नहीं कर सके कृष्ण, या ब्राह्मण का अपना फेसबुक पेज नहीं होगा उस समय कि वो तुरंत, या सेल्फी क्लिक कर देता कृष्ण के साथ, ये देखो आ रहे हैं, बस रुक्मिणी प्रसन्न हो जाती फेसबुक पर देखकर। कुछ नहीं था। तो रुक्मिणी इंतजार कर रही है वहां पर, तैयारियां शुरू हो गई, तो शादी की तैयारी। और भीष्म की इच्छा बिल्कुल नहीं थी करने की, लेकिन मजबूरी थी, रुक्मी सुन नहीं रहा था, बड़ा पुत्र है तो अब जबरदस्ती वो तैयारियां कर रहे हैं, करना तो है, लड़की की शादी है राजकुमारी की। तो तैयारियां हुई, सड़कों को साफ किया गया, सुगंधित जल छिड़का गया, पताकाएं लगाई गई, बड़े बड़े वो आर्च बनाए गए, और बहुत कुछ तैयारी की। ब्राह्मणों को उन्होंने दान दिया, मंत्रों का उच्चारण किया, तो ये सब वो कर रहे हैं। तो जब तैयारियां देखी अब रुक्मिणी ने, रात तो निकल गई थी, अब रुक्मिणी ने देखा कि ब्राह्मण नहीं आए, कृष्ण का कोई संदेश नहीं, तो रुक्मिणी थोड़ी चिंता में आ गई। और उन्होंने, ये सुबह सुबह का समय था, और रुक्मिणी सोचने लगी कि क्या हुआ, कृष्ण क्यों नहीं आए। ऐसा तो नहीं है कि मेरा संदेश सुनकर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरा प्रपोजल रिजेक्टेड, तो ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण अब आएंगे ही नहीं। फिर वो सोचने लगी कि हाँ हो सकता है मेरे में कमी है, लेकिन फिर भी कृष्ण मुझे ऐसे अस्वीकार तो नहीं करेंगे। फिर वो सोचने लगी, हो सकता है ब्रह्मा जी ने रोक दिया हो, कृष्ण आने के लिए तैयार हो, ब्रह्मा जी ने रोक दिया हो, शायद मैंने कहीं कोई गलती कर दी होगी कभी ब्रह्मा जी के प्रति। अरे ब्रह्मा जी के प्रति तो मैंने कोई गलती नहीं की, शिव जी हो सकता है रोक दिया हो, शिव जी ने रोक दिया होगा, और नहीं तो उनकी पत्नी, उन्होंने तो निश्चित रोक दिया होगा, शिव जी की पत्नी ने, हो सकता है मैंने उनकी पूजा नहीं की ठीक से, कहीं पर गलती कर दी होगी, तो इन लोगों ने रोक दिया। और वैसे भी सती के रूप में शिव जी की पत्नी इन्होंने अपने देह को त्याग दिया था, तो शायद मुझे भी ये वो वही कहना चाहती हैं कि तुम भी देह त्यागो, मुझे नहीं मिले तुम्हें भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे सोचने लगी रुक्मिणी कि क्या क्या हुआ होगा, और ऐसे करते करते उन्होंने आंखें बंद कर ली और ध्यान करने लगी कृष्ण का, कि क्या कृष्ण मुझे ऐसे छोड़ देंगे, क्या किस कृष्ण मुझे लेके नहीं जाएंगे, क्या मुझे मरना होगा। अभी आंखें उन्होंने बंद कर ली और इतने में ही उन्हें सुनाई दिया ब्राह्मण का शब्द, सुनंद नाम था उस ब्राह्मण का। तो वो ब्राह्मण आया कि मैं सुनंद ब्राह्मण आपका दर्शन करना चाहता हूँ। आ गए थे अंदर तक, उनको रोका नहीं किसी ने, उनको अनुमति थी, रुक्मिणी ने कहा था जब भी आए इनको कोई रोके नहीं, रात में भी आए तो भी रोकना नहीं। तो ब्राह्मण अब आए तो उस समय रुक्मिणी आंखें बंद करके बैठी थी और उन्होंने आवाज दी ब्राह्मण ने, मैं सुनंद ब्राह्मण आपके दर्शन का अभिलाषी आ गया। और उस समय रुक्मिणी ने आंखें खोली और रुक्मिणी ने ब्राह्मण के प्रसन्न चेहरे को देखा। अभी ब्राह्मण ने कुछ कहा नहीं था, लेकिन रुक्मिणी ने उनकी प्रसन्नता को देखा और जैसे ही देखा रुक्मिणी समझ गई ये ब्राह्मण प्रसन्न है तो फिर निश्चित कृष्ण आ गए, शुभ समाचार है। कभी कभी लक्षणों से हम लोग शुभ अशुभ चीजों को देखते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी भी वर्णन करते हैं कि ब्राह्मण को देखने से पहले ही देख रही थी उसी समय उनके अंगों में शुभ लक्षण प्रकट होने लगे, उनकी जो आंख है बाई तरफ की, हाथ है, जंघा है, वो फड़कने लगी, तो ये शुभ लक्षण है। तो अब रुक्मिणी समझ गई कि कृष्ण आ गए, रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हो गई, उन्होंने पूछा और ब्राह्मण ने संदेश दिया, आ चुके हैं आपके स्वामी, आ चुके हैं, मैं उनके साथ ही आया हूं। जैसे ही ये सुना रुक्मिणी ने इतनी प्रसन्न हुई कि वो कुछ देना चाहती थी, तो उन्होंने सोचा मैं क्या दूं इसको, इसने जो मुझे समाचार दिया है उसके सामने कुछ इसको ऐसा देना चाहिए जो कुछ जो मैच हो। तो उन्होंने सोचा कुछ धन दूं, नहीं धन बेकार है, कुछ हार दूं, नहीं हार बेकार है। उन्होंने कहा अपने आप को दूं, नहीं मैं नहीं। फिर उन्होंने सीधा दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने पूरा प्रणाम झुककर प्रणाम किया उस ब्राह्मण को। तो रुक्मिणी ने सोचा कि इसके अलावा मैं और क्या दे सकती हूं, तो इसीलिए उन्होंने प्रणाम किया। और आचार्य गण वर्णन करते हैं कि जैसे ही झुककर प्रणाम किया रुक्मिणी ने, पंचांग प्रणाम किया होगा, तो रुक्मिणी ने जैसे ही झुककर प्रणाम किया, कौन झुक गई उस ब्राह्मण के सामने, लक्ष्मी देवी। और वर्णन है कि उसी समय उसका घर भर गया स्वर्ण से, गहनों से, ऐश्वर्य से, उसका घर भर गया क्योंकि रुक्मिणी देवी झुक गई उसके सामने। और रुक्मिणी किसके सामने झुकती हैं, लोग तो पागल हैं लक्ष्मी के लिए, लेकिन लक्ष्मी किसके सामने झुकती हैं, जो भगवान का संदेश लाते हैं अर्थात गुरु, उनको कोई कमी नहीं रहने देती हैं लक्ष्मी देवी। जो भगवान की सेवा में लगे हैं उनको कोई कमी नहीं रखने देती हैं। श्रील प्रभुपाद एक स्थान पर कहते हैं जहां वो कह रहे हैं कि मंदिरों में प्रसाद बांटना चाहिए, और वो कहते हैं कि आपको विश्वास नहीं है कि मंदिर कौन चला रहा है, राधा रानी का डिपार्टमेंट है, बांटिए जितना बांटना है, विश्वास रखिए वो चलाएंगे। हमारा विश्वास नहीं है, हमें लगता है मंदिर हम चला रहे हैं, और इसीलिए सारी तकलीफें हैं। तो वो झुक गई और उन्होंने सोचा बस इस समय पे तो मैं यही कर सकती हूँ कि इतना ही, और उससे ज़्यादा मैं क्या इस ब्राह्मण के लिए कर सकती हूँ। तो फिर उस समय जो भीष्मक थे, जब उनको पता चला पिता को कि कृष्ण बलराम आए हैं, तो वो गए, स्वागत किया कृष्ण बलराम का, बड़ा स्वागत किया उनको। उससे पहले दमघोष अर्थात शिशुपाल के पिता और फिर जितने भी अन्य राजा थे, जरासंध ये इत्यादि सब आ चुके थे, उनका भी स्वागत किया था भीष्मक ने, उनको भी स्थान दिया था अच्छे से रहने के लिए। और इन सारे राजाओं ने मंत्रणा की थी कि अगर कृष्ण आया रुक्मिणी को लेने के लिए तो हम सब मिलकर विरोध करेंगे, इसलिए सब अपनी सेना के साथ आए थे, युद्ध करने के लिए तैयारी में आए थे। तो राजा भीष्मक ने स्वागत किया कृष्ण बलराम का, और फिर कृष्ण शहर में घूमने लगे। और जब लोगों को पता चला कि कृष्ण आए हैं, वो बड़ा देखने के लिए आए, और जब लोगों ने सुंदरता देखी तो उन्होंने कहा कि केवल कृष्ण ही रुक्मिणी का विवाह के, रुक्मिणी के विवाह के लिए केवल कृष्ण, हमारी जो रुक्मिणी है उसका विवाह केवल कृष्ण से होना चाहिए, रुक्मिणी के लिए कृष्ण योग्य हैं और कृष्ण के लिए रुक्मिणी योग्य है। तो बड़े हृदय से सब प्रार्थना करने लगे कि ये विवाह ना हो जो हो रहा है शिशुपाल से, लेकिन कृष्ण से विवाह हो जाए। और क्या किया सारे लोगों ने, वो कहते हैं कि हमारे जितने भी पुण्य कर्म हमने किए हैं उस सबका लाभ हम देते हैं इसके लिए कि ये विवाह जो है शिशुपाल से टूट जाए और कृष्ण से हो। अपने सारे अच्छे कार्यों का फल उन्होंने अर्पण कर दिया। देखिए ये जो सारे कार्यों का फल अर्पण किया जाता है, ये साधारणतः दो अवस्थाओं में किया जाता है, एक प्रेमवश और दूसरा करुणावश। हम लोग देखते हैं जब अम्बरीश महाराज उस समय जब दुर्वासा मुनि सब तरफ से भागकर उनके पास आए, कहीं किसी ने नहीं रक्षा की, भगवान ने भी कह दिया हम भक्त पराधीन हो, उनके पास जाओ मेरे पास मत आओ, तो जब आकर चरण पकड़ लिए दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के, और सामने से सुदर्शन था, अम्बरीश महाराज ने प्रार्थनाएं अर्पण की सुदर्शन को, और उन प्रार्थनाओं के अंत में क्या कहा अम्बरीश महाराज उनसे, कहते हैं कि अगर हमने कहीं बहुत अच्छे कार्य किए हैं, कोई तपस्या की है, कोई दान धर्म किया है, किसी के लिए अच्छा कार्य किया है, कोई पूजा इत्यादि की है, कोई पुण्य कार्य किया है, उस सब का फल ले लीजिए और इसको छोड़ दीजिए। ये करुणा थी अम्बरीश महाराज की। और यहाँ ये नगरवासियों का प्रेम है रुक्मिणी के प्रति कि वो अपना सारा जो भी किया है फल उसको दे रहे हैं कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो जाए बस। तो ऐसे सारे जितने लोग थे उन्होंने प्रयास किया, और फिर रुक्मिणी अब तैयार हुई सुबह, अब तो समय आ गया, रुक्मिणी बहुत सुंदर लग रही थी, बड़े अच्छे से तैयार हुई रुक्मिणी, गहने पहने, सुंदर वस्त्र, नए वस्त्र धारण किए, क्योंकि उन्हें पता था वो कृष्ण को देखने जा रही हैं। लोग सोच रहे थे कि क्योंकि विवाह है इसीलिए तैयार हो रही हैं, रुक्मिणी तैयार हो रही थी क्योंकि कृष्ण को देखने जा रही थी। तो अब रुक्मिणी देवी चली, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं पैदल चली, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि दरअसल वो पालखी में आई थी और अंत के कुछ समय पैदल चली, बस मंदिर में पहुँच कर 10-15 फीट वो पैदल चली, बाकी वो पालखी में आई थी। तो पालखी में आई, सैनिक हैं साथ में, रक्षा कर रहे हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, महिलाएं चल रही हैं, स्त्रियां चल रही हैं, वरिष्ठ स्त्रियां हैं, सखियां हैं, बहुत सारे लोग, और सारा पूजा की सामग्री साथ में चली, और उन्होंने गिरिजा जी के मंदिर में प्रवेश किया। वहां जो वरिष्ठ महिलाएं थी उन्होंने बताया कैसे पूजा करनी है इत्यादि, पूजा हो गई, और फिर रुक्मिणी ने प्रार्थना की गिरिजा जी से, कृष्ण को मेरा पति बनाइए। हम लोग देखते हैं कि ऐसे ऐसे स्थानों पर कृष्ण के जहां लीला है उसमें देवी देवताओं का वर्णन क्यों आता है, कृष्ण की प्राप्ति के लिए। कात्यायनी की पूजा देव क्यों की गोपियों ने, कृष्ण की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ भी प्राप्ति के लिए पूजा की कि बस कृष्ण को मेरा पति बना दीजिए। और फिर जब पूजा हो गई, अब रुक्मिणी बाहर निकली और अब केवल अपनी एक सखी को लेकर निकली है। अब उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वो पालकी है, वो सैनिक हैं और वो सारी महिलाएं हैं, स्त्रियां, सबको छोड़कर एक सखी को लिए और निकल गई बाहर अकेले। और उस समय वो चल रही हैं। दरअसल कुलीन स्त्रियों के लिए सबके समक्ष आना मना होता है, वो नहीं आ सकती ऐसे। और अभी तक आई नहीं थी रुक्मिणी, किसी ने देखा नहीं था, जानते थे सुंदरता पता थी लेकिन देखा नहीं था। और अब वो ऐसे ही चल रही हैं। और कैसे चल रही हैं, ऐसा नहीं कि पूरा घूंघट किया हुआ है, उन्होंने हटा दिया ताकि कृष्ण को देख सकें। उन्हें चिंता थी कि अगर घूंघट करेंगे, कृष्ण ने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं कृष्ण कहाँ है, कृष्ण मुझे नहीं देखेंगे तो कैसे हरण करेंगे। तो उन्होंने वो देख रही हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि चलते चलते उनके जो बाल हैं वो उनके आँखों के सामने आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी दो उंगलियों के नाखूनों से ऐसे बाल पीछे किए, और इसलिए कि कृष्ण को स्पष्ट देख सके। तो ऐसा क्यों हुआ कि वो ऐसे आ गई, शास्त्र का नियम क्यों तोड़ दिया? दरअसल स्त्रियों को कुछ समय पर सार्वजनिक रूप से सामने आने की अनुमति है शास्त्र में। इसका वर्णन आता है रामायण में, जिस समय युद्ध हो गया, रावण का वध हो गया, और रावण के वध के बाद सीता को बुलाया गया। तो जब सीता आई तो जितने वानर थे वो सब सीता को देखना चाहते थे कि अरे देखे तो सही, है कौन जिनके लिए हमने अपनी पूरी प्राण लगा दिए, इतना युद्ध कर लिया, अभी तक पता ही नहीं था है कौन सीता। तो अब जब आई है तो रुक नहीं पाए वो लोग, कि आए जैसे आराम से खड़े थे लाइन में, कोई बात नहीं, झुक के खड़े थे, आइए जाइए, सब आतुर भाग रहे हैं देखने के लिए। और विभीषण और उनके लोग हटा रहे हैं, हटो हटो हटो, विभीषण हर बंदर को हटा रहे, हटो हटो सामने से हटो। ऐसा होता है ना कभी कभी, कोई बड़े व्यक्ति आ रहे हैं, सब देखना चाहते हैं, तो फिर कुछ लोग हटाते हैं उनको, हटो हटो हटो। प्रभुपाद जाया करते थे तो उनको भी बाकी लोगों को हटाया करता था, हटाया जाता था, कोई पाँव नहीं छुएगा, हटो दूर दूर रहो। तो सीता देवी आ रही और सारे वानर कूद रहे, देखना चाह रहे कौन, एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं, कोई पेड़ पर चढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, बस देखना चाहते हैं कौन सीता। और सीता उस समय पालकी में है, उनको कोई देख नहीं रहे। तो वानरों का था कि कहीं से दिख जाए है कौन ये। ऐसा नहीं कि वो कुछ काम वासना से देख रहे थे, वो बड़े आदर से सीता को माँ के भाव में देखना चाहते थे कि रामचंद्र जी ने जिसके लिए इतना बड़ा युद्ध कर दिया है कौन वो। तो जब रामचंद्र जी ने देखा कि विभीषण ऐसे वानरों को अलग कर, हटो 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 हटो, तो रामचंद्र जी ने रोका विभीषण को, क्या कर रहे हो? अरे ये सारे लोग, इन्होंने मेरे लिए अपने प्राण तक देने के लिए वो तैयार थे, और दिए भी कितने, बाद में भगवान ने पुनर्जीवित किया, लेकिन दी प्राण देने के लिए तैयार है ये, और तुम ऐसा उनके साथ आचरण कर रहे हो, रुक जाओ। तो विभीषण रुक गए। तो भगवान ने कहा सीता को कहो नीचे उतरे और सबके सामने आए, सबको देखने। तो सारे लोग हैरानी से देख रहे रामचंद्र जी के, ये क्या कह रहे हैं, स्त्रियां बाहर नहीं आती हैं ऐसे, तो कैसे रामचंद्र जी ने कह दिया कि आओ सीता को बोलो सबके सामने आए, हाँ देखने दो सबको। तो उस समय रामचंद्र जी कहते हैं, ये वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, कि रामचंद्र जी ने कहा कि कुछ समयों पर स्त्रियों को सबके समक्ष आने की अनुमति है। तो कहते हैं कि अगर कोई विपदा आ जाए तो विपदा के समय वो आ सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ा युद्ध हो तो उस समय स्त्रियां आ सकती हैं, आवश्यक अनिवार्य हो तो। और फिर कोई उत्सव हो तो उस समय भी आ सकती हैं, विवाह का उत्सव हो उस समय भी आ सकती हैं। तो इसी को सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि रुक्मिणी देवी ने उत्सव का बहाना लेकर वो सबके समक्ष आ गई। तो ये शब्द इस्तेमाल इसलिए किया उन्होंने कि ये बताने के लिए कि रुक्मिणी ने कोई नियम नहीं तोड़ा, ये नियम है इसलिए वो आ गई। तो रुक्मिणी देवी अब चल रही हैं और कृष्ण को देखे जा रही है इधर उधर से, वो कहाँ है कृष्ण, आँखों में इधर कभी इधर, कहाँ कौन से जगह खड़े हैं। और जितने राजा थे वहाँ पर सब उपस्थित थे, क्योंकि वो लोग आए थे, जरासंध, शिशुपाल, ये वो बहुत सारे राजा किस लिए आए थे कि हम रक्षा करेंगे। तो वो सारे राजाओं ने सुंदरता को देखा। जय शशि गौर नटराज दयाल निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय। उन्होंने सुंदरता को देखा रुक्मिणी की, और क्या असर हुआ, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, भगवान की शक्ति है। तो ऐसा वर्णन करते सुखदेव गोस्वामी की वो लोग इतने प्रभावित हो गए कि अपने अपने रथ पर खड़े थे वहीं से नीचे गिर पड़े, मूर्छित हो गए सुंदरता को देखकर। बताइए क्या सुंदरता होगी। हम लोग तो इस जगत के कोई मिस यूनिवर्स, मिस ऐश्वर्या, क्या जो भी नाम है, ऐश्वर्या राय कौन है, नहीं जो भी हो गया, अब तो पूरा पहले कोई नए आए होंगे ना, कौन है मिस यूनिवर्स अभी, किसी को पता है? हाँ बताना भी नहीं, नहीं तो ब्रह्मचारी इसमें जो कहाँ से पता है, हमें भी नहीं पता यार, जो भी होगी। हम लोग इस जगत के वो मिस वर्ल्ड, मिस मिस क्या यूनिवर्स, मिस और कुछ होता है, हाँ मिस वर्ल्ड बोल दिया, और कुछ होता है, मिस एशिया, मिस इंडिया, जो भी होता है, हम लोग तो बेहोश नहीं होते देखकर, ये कोई बेहोश नहीं होता, अभी क्या सुंदरता है ही नहीं, बेहोश कहां से होंगे। सुंदरता तो वर्णन जैसे भागवत में कई स्थानों पर वर्णन है, जैसे माता देवहूति, उनका वर्णन है कि जब वो अपने महल की छत पर खेल रही हैं गेंद से, और देवता उनको देखकर अपने अपने प्लेन से नीचे गिर गए, ये सुंदरता है। जिस समय नारद मुनि ने श्रीमती राधा रानी के दर्शन किए, जो अपने आप को बहुत बड़ा ब्रह्मचारी मानते थे, वो मूर्छित होकर गिर पड़े, पद्म पुराण में वर्णन है। और यहां वर्णन है कि सारे राजा, इसे कहते हैं सुंदरता, या फिर दूसरे शब्दों में कहना चाहिए कि जो कृष्ण के लिए बनी है, उन दूसरों, भगवान ने सबको बेहोश कर दिया, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, मैं हूं बहुत है। और जैसे ही ऐसा हुआ, तो जब सारे बेहोश पड़े हैं, तो कृष्ण ने बड़े आराम से रुक्मिणी को उठाया, अपने रथ पर बिठाया और चल दिया। बलराम जी भी थे, बलराम जी सेना के साथ थे, कृष्ण ऐसे ही चल दिए लेकर रुक्मिणी को। तो वर्णन है कि जैसे एक शेर भेड़ियों के बीच से अपने शिकार को ले जाता है, ऐसे श्री कृष्ण लेकर। और जब कृष्ण चले गए, तब ये लोग को सबको होश आया, जरासंध इत्यादि सब खड़े हुए, अरे क्या हुआ, ले गया, अरे शेरों का हिस्सा भेड़िया ले गया, वो लोग कहते लगे। तो ऐसे वो लोग एकदम हैरान हो गए कि क्या हुआ, उनको कुछ समझ ही नहीं आया, और कृष्ण रुक्मिणी को लेकर चल दिए। तो आगे क्या हुआ इसका वर्णन हम कल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी है, कुछ पूछना चाहते हैं? यस हाँ, बहुत ज्यादा आतुर। हमने ये भी बताया कि जितना प्रेम हमारे हृदय में है, हम कर ही नहीं सकते, जितना भगवान करते हैं हम लोग उतना प्रेम कर ही नहीं सकते। तो स्वाभाविक है कि हमारी आतुरता है जितनी, वो भगवान की कहीं अधिक है। तो कैसे समझें, ये यथा माम कहा गया, मतलब जितना वो करते हैं उतना ही भगवान करते हैं, फिर हम ये भी सुनते हैं कि भगवान बहुत अधिक करते हैं, तो इसको कैसे समझे? इसको सरल समझ सकते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते का सरल होता है, आप एक दोगे भगवान एक देंगे, यही होता है ना, यही समझते हैं हम लोग ये यथा माम प्रपद्यन्ते का। तो ये सही है, यही कह रहे हैं भगवान कि अगर आप मुझे एक दोगे मैं एक दूंगा। तो फिर ये कैसे कहा कि जब हम एक कदम बढ़ाते तो भगवान 100 कदम बढ़ाते हैं? क्योंकि आप अपना एक दोगे और भगवान अपना एक देंगे, अंतर है आपके एक और भगवान के एक में। तो जब कहा गया कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, उसका अर्थ है कि हम पूर्ण रूप से उनकी ओर जा रहे हैं, तो भगवान जब वो हमारी तरफ उसी भाव में आएंगे तो उनका कई गुना बढ़ जाता है, इसीलिए हम एक कदम लेते हैं भगवान 100 कदम लेते हैं। ठीक है, ठीक है कि और कोई प्रश्न है किसी का?
Okay. So, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का नाम है. आज समय थोड़ा हो गया इसलिए पहले प्रश्न लेते हैं और फिर समय होगा तो आप सबको धन्यवाद भी करेंगे आने के लिए. अन्य गौड़ीय वैष्णव परंपरा एवं संगठनों के गुरुओं के प्रति इस्कॉन शिष्य के उपयुक्त व्यवहार का वर्णन करें. अमेठी से मुस्कान नंद जी. अन्य गौड़ीय वैष्णव परंपरा एवं संगठनों के गुरुओं के प्रति या अन्य किसी भी वैष्णव गुरु के प्रति, जरूरी नहीं है वो गौड़ीय वैष्णवी हों, कोई भी वैष्णव अगर गुरु हों, तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? हमारा भाव वही होना चाहिए जो हम हमारा आदर वही होना चाहिए जो हम अपने गुरु को देते हैं. वही आदर हमें उनको देना चाहिए, वही सम्मान उन्हें देना चाहिए. एक थोड़ा सा छोटा सा अंतर केवल हम भेद उसमें रखते हैं, बाकी सब समान है. जैसा आदर हम उन्हें देते हैं, जो मान सम्मान हम उन्हें दें, जब वो आए तो कैसे हम उनके आप स्वागत करें, वो सब वही है. बस इतना ही कि हम उनसे श्रवण अधिक नहीं करते हैं. और इसका एक ही कारण है. इसका कारण ये नहीं है कि वो गलत है, वो एकदम सही है, लेकिन इसका कारण है कि जो हमारा पथ है उस पथ के प्रति हमारी निष्ठा पूर्ण बनी रहे. इसीलिए श्रवण हम केवल अपने परंपरा में आए आचार्यों से करते हैं, लेकिन अन्यों के प्रति हमारा भाव आदर का, सम्मान का होना चाहिए. किसी भी गुरु को, गुरु ही क्यों, किसी भी भक्त को हमें कभी निंदा की दृष्टि से देखना नहीं चाहिए. हो सकता है हम कहें कि ये फला फला भक्त परंपरा में नहीं है. आपने बात की परम गौड़ीय वैष्णव परंपरा की, हमने कहा सभी परंपरा. और अगर ऐसा भी कोई भक्त है जो परंपरा में नहीं है, हम उसका भी अपमान नहीं करते. क्या भगवान ने अगर उसके ऊपर कृपा की है तो हम कौन हैं जो हम लोग उनकी निंदा करें? इसीलिए हर एक का आदर सम्मान होना चाहिए. ठीक है, बहुत धन्यवाद. प्रश्न है हरि कथा प्रेमी माता जी का कि हम अपने एकादशी व्रत का फल किसी को और अर्पित कर सकते हैं? निश्चित कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते. हमने इस क्लास के पहले हमने कहा कि इसका जो कहने का, श्रवण करने का जो भी फल है, हम हिजोलिनेस भक्ति चारु स्वामी महाराज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अर्पित कर रहे हैं, तो निश्चित कर सकते हैं. और हमें करना ही चाहिए, स्वार्थी नहीं बने. हम तपस्या करें, हम फल दूसरों को दें ताकि लाभ हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. आगे प्रश्न है द्वारिकानाथ प्रभु का सूरत से. शिशुपाल को कैसे मालूम था कि कृष्ण भी रुक्मिणी को लेने आएंगे, जैसा कि शिशुपाल सब सेना लेकर शादी करने आए थे? हुआ ये था कि जब शिशुपाल इत्यादि ने विवाह की बातचीत चली तो वो जानते थे कि भीष्मक और उनके अन्य जितने भी लोग हैं, अन्य संबंधी हैं, वो कृष्ण से विवाह कराना चाहते हैं. केवल रुक्मी की वजह से विवाह इनसे हो रहा है, शिशुपाल से, अन्यथा सब चाहते हैं उनसे हो. तो इसीलिए शिशुपाल ये सोच रहे थे कि संदेश उनको भी पहुँचा होगा, जैसे हमें पता है कि सब चाहते थे. इसको थोड़ा पीछे करो, कैमरा बहुत आगे लगाते हो. जैसे शिशुपाल ने कहा कि जैसे सबको पता है, हमें भी पता चला कि रुक्मी से विवाह होने वाला, रुक्मिणी का कृष्ण से होना चाहिए था, सब चाहते थे लेकिन हुआ नहीं. तो अब जैसे हमें पता है, ऐसे हो सकता है सूचना वहाँ भी हो. तो इसीलिए इस आशंका से कि कहीं आ जाए और लेकर चला जाए, पहले ही तैयारी करके आए, चिंता नहीं करो ऐसा होगा. और वैसे भी क्षत्रियों के विवाह में युद्ध होता ही था. सारे कृष्ण ने जितने विवाह किए प्राय उन सब में, अब आएगा धीरे धीरे आगे आगे कृष्ण के 1000, 16,108 विवाहों का, सब में प्रायः एक दो को छोड़कर सब में युद्ध किया, तो इसीलिए शिशुपाल तैयारी करके आए थे। ओके, आगे प्रश्न है अमेठी से आनंद। हम भगवान को फूल अर्पित करते हैं तो उसे कैसे अर्पित करें, उसका सही ढंग क्या है? बहुत अच्छा। भगवान को जब फूल अर्पित किया जाता है तो सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि वो फूल किसी ने सूंघा हुआ ना हो। तो जब बहुत अच्छा तो ये है कि फूल अभी बस खिलने वाला है, बस पूरा एकदम खिल गया ऐसा नहीं है, बस खिल रहा है, तो खिलता हुआ फूल भगवान को अर्पण करना चाहिए क्योंकि उसकी सुगंध सबसे अधिक होती है उस समय। तो पहली चीज, भगवान को केवल सुगंधित फूल अर्पित होने चाहिए, ऐसा कोई भी फूल जिसमें सुगंध नहीं है अर्पित ना करें। दूसरी चीज, भगवान को बस खिलता हुआ फूल अगर अर्पण कर सकें तो बहुत अच्छा है। तीसरा, किसी ने सुगंध उसकी ली ना हो। चौथा, उसको अर्पण करने से पहले थोड़ा शुद्ध कर लें जल से, ताकि अगर हमारा हाथ लगने में कुछ होने में अशुद्धि हो गई हो तो उसको शुद्धिकरण करें और फिर भगवान को अर्पित करें। अब भगवान को अर्पित करने के लिए हाथ में लेकर उनको ऐसे उनके पूरे शरीर को दिखाते हुए हम अर्पित कर सकते हैं भगवान को फूल, और फिर अर्पित करने के बाद उनको उनके चरणों में हमें रख देना चाहिए। ठीक है, आरती के समय भी हम अर्पित करते हैं, चरणों में रखते हैं, फिर वो फूल लेकर थोड़ा सा एक महाप्रसाद के रूप में अन्यों को देते हैं। सूरत से हरिनंदन प्रभु, अच्छा प्रश्न नहीं है। ओके, प्रश्न, भगवान के शुद्ध भक्त को इतनी तकलीफ क्यों आती है? देवांश का प्रश्न है। कल हम लोग सुन रहे थे, परम पूज्य गिरिराज महाराज ने एक प्रवचन दिया था सूरत के ही भक्तों के लिए, और उसमें उन्होंने बहुत सुंदरता से श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों को कोट करते हुए ये समझाया था कि क्यों शुद्ध भक्त को तकलीफ होती है। बतला रहे थे कि शुद्ध भक्त को कभी नहीं मानना चाहिए कि कर्म के अनुसार उसको तकलीफ हुई, कि उसके कर्म थे, लेकिन हमेशा जब शुद्ध भक्तों के साथ कुछ ऐसा होता है तो वो भगवान की योजना मानी जाती है, इसलिए वो भगवान की योजना है। भगवान कुछ बहुत बड़ा कार्य कराना चाहते हैं और इस कारण से तकलीफ होती है। वैसे अगर शास्त्र के आधार पर देखें तो बहुत से कारण हैं भक्तों को तकलीफ देने के। जैसे कुंती महारानी एक कारण देती हैं कि तकलीफों में हमारी आसक्ति, हमारा स्मरण आपके प्रति बढ़ जाता है, तो इसलिए एक वो कारण है। दूसरा, भगवान अपने भक्तों की श्रेष्ठता को दर्शाना चाहते हैं कि देखो मेरा भक्त कितना श्रेष्ठ है, ऐसे दुख में ऐसे कष्ट में भी मुझे भूला नहीं है, तो गुणगान कराने के लिए भी भगवान भक्तों को कष्ट देते हैं। ठीक है, प्रश्न है अम्मी माता जी का, रुक्मिणी को हम देवी कहते हैं, सीता को भी हम देवी कहते हैं, लेकिन राधा को हम रानी कहते हैं, ऐसा क्यों है? बाकी सब देवी हैं और राधा रानी हैं। ऐसा नहीं है कि श्रीमती राधा रानी को देवी नहीं कहा जाता, शास्त्रों में उनको भी देवी कहा गया है, तो ये तो स्वाभाविक है कि देवी कहा जाता है उनको, लेकिन साधारणतः ब्रज में एक मधुर भाव को प्रकट, जैसे देवी एक ऐश्वर्य का संबोधन है, सीता देवी, लक्ष्मी देवी, रुक्मिणी देवी, सत्यभामा देवी, ये एक ऐश्वर्य का संबोधन है, और सीता राधा रानी के लिए भी किया जाता है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं, लेकिन ज़्यादातर भक्त राधा रानी को बहुत माधुर्य भाव में, ब्रज के भाव में संबोधन करते हैं, इसलिए श्रीमती राधा रानी कहा जाता है। वैसे भी वो ब्रज की रानी हैं, उनको ब्रजेश्वरी कहा जाता है, ब्रज की रानी हैं, कृष्ण के हृदय पर राज्य करती हैं, इसलिए रानी हैं, तो इस मधुरता को लाने के लिए उनको ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ओके, और एक प्रश्न है वृंदावन से, बीइंग इनसेंसिटिव टू अदर्स एंड अदर्स ऑफरिंग, Can it be attributed to concept of impersonalism in bhakti? Devotees offer gifts in charity to other devotees so that the gifts can be used in the service of Krishna. But over a time period, the devotees who has received the gifts loses respect towards gift and impart casual dealings towards them. This is often seen in temples where generous things that are being given for the service doesn't fulfill their purpose of creation. How do we handle such mentalities? Yes, it is very important. And if we do not respect others, or if we are not sensitive to others' offerings, it is definitely a form of impersonalism. Because bhakti is very personal. Personal means what? Personal means to understand that Lord is a person. Person means to understand that Lord loves everyone. Personal means to understand that we need to love everyone. Personal means to understand that each devotee of the Lord is a very important person. Personal means to understand that everything belongs to Krishna. And personal means to understand that respect, honor, protect everything because it belongs to Krishna. So if we don't do that, definitely it is impersonalism. And as far as your question that devotees sometimes give and it is not protected or it is not maintained properly, especially when you give to the temples, and then we see that people are not, what should be the mentality? One side, it is not very good for the people or the devotees or even the temples that if they receive anything and they don't take care of it. Because the person who's giving is giving with full heart, thinking that it should be utilized for the service of the Lord. And if we just waste it, we do not maintain it, thinking that, you know, anyway, if this gets spoiled, another one will come. It's a very wrong mentality the devotees develop. If someone has developed this, he should immediately give it up. That, okay, no problem. We have a cooler, if it gets spoiled, no problem. We'll get another one. There are many devotees, rich devotees in our congregation, they will donate. No, each and everything should be protected. Srila Prabhupada was very careful even about 25 paisa. He used to keep account. What to talk of 25 paisa? Prabhupada was even careful about the vegetable waste not going out of the temple but being used for the cows of the temple. One time Srila Prabhupada was there in his room and he saw one person, he was taking all the vegetable waste. We have cut the vegetable, all that waste. And Prabhupada said, stop him, he's a thief. And devotee said, what? He's just taking the waste. Prabhupada said, no, it's meant for our cows. Why should he take it? So Prabhupada was even concerned of such small things. And we don't bother. The reason is that because of Prabhupada's mercy, we have entered into this moment at a time when a lot of opulence has come to the moment. Ask those who entered this moment when there was nothing, how they have struggled hard for each small thing, just to get a house, just to get a car, just to get some facility for traveling, just to get a mic, just to get a harmonium. But here we get everything, so we become casual. So we have to be very, very careful. And I have been speaking on this even few days back to our brahmacharis. And not only that, I have getting message from devotees that this thing is not maintained in the temple, that is not maintained. So we will try our best. So temple should try their best to keep the things properly. And if someone who has given, if he sees that things are not being kept, what he can do? Number one, he can request the temple authorities that please, there is such a such thing, it's very costly, why don't you maintain it? It is his right. He can do it. So he can request the authorities to maintain. Or he can himself provide some things to maintain it.